سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد ہماری یہ پہلی مجلس ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا اور بھی زیادہ پیچھے کی مجالس کا ریکیپ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اندر تھوڑی جگہ ہے، اگر باہر کی بجائے تھوڑا اور اندر پہلے آ جائیں. تو اس جمعے کی مجلس کے اندر ہمارے یہاں جو موضوع زیر گفتگو ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جو گھر میں رہتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، گھر کے اندر رہ کر کے وہ کیا کرتی ہے، یا کچھ بھی نہیں کرتی، یا بے فائدہ کام کرتی ہے، یا فائدہ مند کام کرتی ہے، اور اس کو اپنے گھر کے اندر کا جو وقت ہے اس کو مزید بہتر وہ کیسے بنا سکتی ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور ہم ایک مضمون انگریزی کا، بلکہ دو مضامین انگریزی کے اس کے لیے استعمال کر رہے تھے، جو کہ امریکہ میں رہنے والی ایک خاتون ہیں جو کہ ام خالد کے کنیت سے لکھتی ہیں. تو ان کا ایک مضمون ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ Who says that Muslim housewives do nothing، کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان جو گھریلو عورت ہوتی ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، بس ایسی فارغ بیٹھی رہتی ہے، کون کہتا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اور دلیلوں کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو گھر میں عورت رہتی ہے وہ کتنے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس مضمون کو ختم کر کے دوسرا مضمون پڑھنا شروع کیا تھا کہ Why do some Muslims under prioritize the role of a wife mother، کہ کچھ مسلمان انہوں نے بڑا یعنی عاجزی سے کام لیا، کچھ مسلمان کہہ کر کے، ورنہ شاید آج کے دور میں یہ کچھ سے بات آگے بڑھ چکی ہے، کہ بہت زیادہ مسلمان آج کل گھر میں رہنے والی عورت کے جو کردار ہے اس کو کم اہمیت، انڈر پرائیورٹائز کیوں کرتے ہیں، غیر اہم کیوں قرار دیتے ہیں، جو کہ گھر میں بیوی کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے یا ماں کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ان مضامین کو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں اور یہ ساری ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شاید بالکل شروع میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کسی مسئلے کا جو حل ہے وہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ اس کی جو اصل کاز ہے اس کو آپ معلوم کر سکیں، اس کو آپ ڈائیگنوز کر سکیں. کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کے انسان کے اوپر سمٹمز، آثار نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کو سمٹمز کہتے ہیں. تو سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ کسی کو کھانسی ہونی شروع ہو گئی، کسی کو نزلہ زکام ہونا شروع ہو گیا، کسی کو جو ہے وہ پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا. یہ ظاہری سمٹمز ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی اہمیت سمجھتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور مجھے جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، مجھے علاج کروانے کی ضرورت ہے. اب وہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جو بیکار کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کوئک قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ فلانی فلانی چیز کر لیں جس سے کہ آپ کا یہ درد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے پیراسیٹامول کی گولی دے دی کہ بھئی آپ یہ گولی کھا لیں، گولی کھانے سے جو ہے وہ آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. پیٹ کا درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی گولی دے دیں، کوئی پیر کا درد ہو رہا ہے بروفین کی گولی دے دیں، تو ان گولیوں سے جو ہے وہ آپ کا یہ درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ شخص گولی کھا لے گا تو اس کا درد واقعی ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے وہ پرابلم ایلیویٹ ہو جائے گی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے نکل آئے گی، پھر سے ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس ڈاکٹر نے کوئی ڈائگنوسٹک اسٹیپس نہیں چلائے، کوئی صحیح معنوں میں پتا کرنے کی کوشش نہیں کری کہ بھئی کس وجہ سے درد ہو رہا تھا، کیا اندر کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے، کوئی فنگل انفیکشن ہے، یا کوئی ٹیومر ہے، کیا ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے. تو اچھے ڈاکٹرز، اچھا جو آج کل کہلاتا ہے طبی نظام, تو وہاں پر یہ سارے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ بھی ہے اور سی ٹی اسکین بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرواتے ہیں اور ایم آر آئی بھی کبھی کرواتے ہیں, نہیں کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پراپر میڈیکیشن بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پریکاشنری میجرز بھی دیتے ہیں, احتیاطی قدم آپ نے کیا اٹھانے, کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, کن چیزوں کو آپ نے زیادہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اور ان کو ہم اچھا ڈاکٹر کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اچھا علاج کیا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے جس طرح سے ایک انسان کے جسم کے اندر یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے انسانی معاشرے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی معاشرتی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں, وہ سارے کے سارے سمپٹمز ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک بد امنی پھیلی ہوئی ہے, معاشرے کے اندر ایک بدتمیزی پھیلی ہوئی ہے, معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی برا سلوک کیا جانا. ایوری ون از جسٹ وریڈ اباؤٹ ہم سیلف ہر سیلف, بالکل جیسے جس کو کہتے ہیں ہم کہ جی نفسا نفسی کا معاملہ ہے, بس مجھے اپنے نفس کی فکر ہے, مجھے اور کسی کی فکر نہیں ہے. اگلے بندے کو جو ہے اگر کاٹ کے بھی کھانا پڑے تو میں اس کو کاٹ کے بھی کھا جاؤں گا. ہمارے کراچی میں کہتے ہیں بیچ کے کھا جائے, اگر میں بیچ کے بھی کسی کو کھانا پڑے میں بیچ کے بھی کھا جاؤں گا. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے, اپنا مقصد پورا کرنا ہے, اپنی خواہش پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں, گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں, گھروں کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, کوئی کسی پر تیزاب بھی پھینک دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا سائیکولوجیکل امراض کا شکار ہوتا ہے, کہیں کچھ پرابلم ہے. جو امریکہ یورپ کے مسئلے ہم سنتے تھے آج سے 10 سال پہلے, امریکہ یورپ کی کہانیاں آتی تھیں, نیوز آتی تھی, بچے نے مار دیا, 20 لوگوں کو مار دیا, اپنے ماں باپ کو مار دیا اور فلانے کو مار دیا اور اس کے بعد اپنی بھی خودکشی کر لی. اب وہی کی ساری جو نیوز ہے وہ ہمارے اپنے شہروں سے آ رہی ہیں, لاہور سے آ رہی ہیں, کراچی سے آ رہی ہیں, انڈیا کے شہروں سے آ رہی ہیں. تو معاشرہ جو ہے وہ اتنے زیادہ بگاڑ کا شکار کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی اوپر اوپر سے سپرفیشل قسم کی جو سمٹمز نظر آتے ہیں ان سمٹمز کو ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. ہاں بھائی فلانا حل کر لو, فلانا حل کر لو, دنیاوی طریقے سے ہم ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بس کسی طریقے سے جائے وہ قوانین جو ہے وہ نافذ کر دو, پکڑ لو, جیلیں بھر دو, یا کسی اور طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو, اچھا پولیس سے ہینڈل نہیں ہو رہا, رینجرز لے کر کے آ جاؤ, پیراملٹری فورس لے کر کے آ جاؤ. ان کے پاس گنز اچھی نہیں ہوتی تھی, ہمارے یہاں پہلے شروع میں بہت شور مچاتے تھے, پولیس کے پاس گنز اچھی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ جو انہوں نے جو ہے وہ کلاشن کو پکڑا دی ہر پولیس مین کو, ہر پولیس مین جو ہے وہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی جو ہے وہ ریوالور اور رائفل اور مشین گن لے کے کھڑا ہوا ہے, مسئلہ حل ہو گیا. جتنے تھے اس سے زیادہ پتا نہیں کتنے زیادہ بڑھ گئے, جتنی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, جتنا جو ہے وہ آرمڈ رابری ہو رہی ہے, جتنا جو ہے وہ لوگوں کو موبائل مانگنے آتے ہیں, ہاں بھائی ذرا دکھائیے گا موبائل, وہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی تھوڑی سی ریزسٹنس کرتا ہے گولی مار کے چلے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو ایک ہی دن کے اندر 6 بندوں کو گولی مارنے کے بارے میں ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بتایا, اے ٹی ایم کے اوپر جو ہے پیسے نکالنے کے لیے گیا تھا تو وہ آگے سے انہوں نے مانگنے کے لیے آ گئے, ہاں بھائی جتنے ہیں آپ ہمیں ذرا ہمارا بھی کچھ خیال کر لیا کریں, انہوں نے کہا یہ میرے ہیں میں کیسے آپ کا خیال کروں, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, گولی مار کے چلے گئے. کسی کی وفات ہو گئی, کوئی جو ہے وہ ہسپتال پہنچ گیا, کسی کا کچھ مسئلہ ہو گیا. تو یہ سب جو معاشرے کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں تو ان کا کیا حل ہے, کیا ان کی اصل ہے, حقیقت کیا ہے, کہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں؟ تو اوپر اوپر سے جو ہے وہ آپ قوانین یا کچھ اور سوفسٹیکیشنز اور کیمرے لگا دینے سے, امریکہ کے اندر جو ہے بڑا مشہور تھا کہ جی نیو یارک کے اندر جو بروز ہوتے ہیں نا, وہ برونکس کا جو برو ہے اور جو کوئنس کا جو برو ہے, وہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے جی, بہت لوگوں کی جو ہے نا وہ جان مال جو ہے بالکل محفوظ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے نا وہاں پر جب یہ ٹیکنالوجی زیادہ آئی تو انہوں نے جا کر کے وہاں پہ کلوز سرکٹ ٹی ویز لگا دیے, کیمراز لگا دیے اور ہر جگہ سے وہ مانیٹرنگ شروع ہو گئی. اب جو مانیٹرنگ شروع ہو گئی تو واقعی برونکس کے برو کے اندر جو ہے نا وہ کرائم کم ہو گیا, لیکن جب کرائم کم ہوا تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بجائے اس کے سڑکوں پہ آ کر کے لوگوں کو لوٹتے, وہ لوٹنے کا نظام جہاں پہ کیمراز خراب ہیں, جہاں پہ کیمراز نہیں کام کر رہے, نہیں لگے ہوئے وہاں تو ابھی بھی لوٹ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ لگے ہوئے وہاں پہ نہیں لوٹ رہے. تو اب کیا کیا انہوں نے, وہ گھر پہ بیٹھ گئے اور گھر پہ بیٹھ کر کے انہوں نے سائبر کرائم شروع کر دیا. اب جو ہے سائبر کرائم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کرائم بن گیا, सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको कमाने हैं तो आप साइबर क्राइम के जरिए से जो है ना वो लोगों के बैंक अकाउंट्स को लूटें, आप जो है वो उनकी ट्रांजैक्शंस को जो है वो हैक करें, आप फलानी जगह से पैसे उतारें, फलानी जगह से पैसे निकालें, तो क्राइम तो कम नहीं होता है ना, क्राइम की शक्ल बदल जाती है ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को करते भी हैं। और हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी कोई नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है और जो है वो संजीदगी भी नहीं है, तो हालात बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर हमारे कुछ दोस्त जो हैं माशाल्लाह किताबें भी पढ़ी हुई हैं और उन्होंने जो है वो कुछ और भी दीन वीन भी पढ़ लिया है, तो अब जो है ना वो आगे से जो है वो वही सिम्टम्स को सॉल्व करने का तरीका, लेट्स यू नो फिक्स द सिम्टम्स, ऊपर ऊपर से किसी तरीके से जो है ना वो हम लेपा पोती का काम करते हैं, हमारे उर्दू में कहते हैं लेपा पोती का काम करते हैं, पैचवर्क कर दें किसी तरीके से ऊपर से। पैचवर्क करने से क्या होगा, हालात ठीक हो जाएंगे, है ना। इसको हमने एक जुमले के अंदर किसी को समझाने की कोशिश करी, कोशिश करेंगे अभी और भी मजीद समझाने की कि इफ यू कैंट बीट देम लेट्स ज्वाइन देम, राइट। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते, यानी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम को हरा नहीं सकते, तो अब आप जो है ना उस प्रॉब्लम को जो है वो किसी तरीके से, एक लफ्ज नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, उस प्रॉब्लम को किसी तरीके से शरिया कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करें, शरिया कंप्लाइंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, प्रॉब्लम को दूर नहीं करना, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना, इज टू डिफिकल्ट जी, मैं बहुत मुश्किल काम है जी मेरे लिए, मेरे पास टाइम नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कैसे करूं किसी और के लिए, मैं तो खुद इस प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हूं, मैं तो खुद उसके बगैर नहीं रह सकता, तो लेट्स ट्राई टू मेक इट शरिया कंप्लाइंट। अब वो शरिया कंप्लाइंट रूल्स आ रहे हैं, हम बैंकिंग की बात नहीं कर रहे, बैंकिंग की बड़ी डिफरेंट तफसील है, बड़ा उसकी हिस्ट्री है, और हमारे अकाबरीन ने उसके ऊपर जो काम किया है उसको शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के नाम से जिस चीज को रोल आउट किया है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। हम यहां पे बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं वीडियो गेम्स की, ये जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, अब वीडियो गेम्स जो है ये एक लत है और इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और अगर हदीस के ऊपर भी अगर आप दिल की निगाह से हदीस मुबारक को पढ़ें, शरीयत को दिल की निगाह से देखें, अंदर की निगाह खोल करके, तो शरीयत जो है जो खेलों के बारे में उसूल बताती है और हदीस मुबारक के अंदर जो खेलों के बारे में उसूल हैं, उसके अंदर ये फिट हो ही नहीं सकते, ये वीडियो गेम्स फिट हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने खेलों के बारे में जो हमें उसूल बताए तो उनको हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह सूरह लुकमान की आयात की तफसीर के अंदर तफसील के साथ लिखते हैं, तो उनमें एक बात जिसको कि हम बड़ा कोशिश करते हैं वीडियो गेम्स को जस्टिफाई करने के लिए, क्या कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम्हारे दीन में खुशकी और शिद्दत देखी जाए, तुम्हारे दीन में खुशकी और शिद्दत देखी जाए। तो ये क्यों फरमाया था कि भाई जो हबशा के कुछ नौजवान मदीना तैयबा आए हुए थे तो वो फन सिपाहगरी की मश करने के लिए नेजों वगैरह से खेलते थे, स्पीयर्स नेजों से जो है वो खेल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खेल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी पुश्त के पीछे खड़ा करके दिखलाया, यानी उनको छुपा करके अपने पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा बन गए और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को वो खेल दिखाया, उन लोगों को फरमाया इल्हु वल अबू, यानी तुम खेल कूद करते रहो। और बाज रिवायात में इसके साथ ये अल्फाज भी आए, ये अल्फाज इसी वाक्य के साथ आए, फइन्नी अकवहु अन युरा फी दीनकुम गिल्वा, कि मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे दीन के अंदर खुशकी और शिद्दत देखें। तो इस वजह से इस किस्म का जो खेल कूद है वो भी मुसलमान करें। तो अब इस सख्ती और शिद्दत नहीं होनी चाहिए, तो भाई इसको भी आपने वीडियो गेम्स के लिए फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि सख्ती और शिद्दत नहीं होनी चाहिए, चलो बच्चों को वीडियो गेम्स भी खेलने चाहिए। लेकिन हदीस मुबारका के अंदर जो और सराहतें आई हैं कि तुम अपने कल्ब को कभी कभी आराम दिया करो, कल्ब को कभी कभी आराम दिया करो कि जिससे कि कल्ब और दिमाग की तफरी और उसके लिए कुछ वक्त निकालने का जवाब साबित हुआ, ये जहनी तौर पर आसूदगी हासिल हो, جن کھیلوں کے ذریعے سے. لیکن حضرت موسیٰ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ان سب چیزوں میں یہ ہے کہ نیت ان مقاصد صحیحہ کی ہو جو ان کھیلوں میں پائے جاتے ہیں, کھیل برائے کھیل مقصود نہ ہو, کھیل فار دا سیک آف کھیل. جس کو کہتے ہیں کہ کھیل کو جو ہے نا وہ آپ نے ایک عادت بنا لیا, یا کھیل کو جو ہے وہ کمرشل مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ کرکٹ کا کھیل آج ایک, آج تو خیر کیا, پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ ایک انتہائی گلیمورائز کر دیا گیا ہے, اور کمرشل مقصد اس سے بہت سارے حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں جو اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوتے. لیکن کمرشل مقصد اور گلیمورائزیشن, یہ تو اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا, ایک عام آدمی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کھیل برائے کھیل مقصود نہ ہو, اور وہ بھی بقدر ضرورت ہو, اس میں توسع اور غلو نہ ہو, یعنی ایکسس نہ ہو اس کے اندر. اور غلو یعنی آپ بھئی جب حدود سے آگے نکل جاتے ہیں جس چیز کے اندر. اور وجہ ان سب کھیلوں کے جواز کی بھئی ہے کہ در حقیقت یہ جب اپنی حد کے اندر ہوں تو پھر یہ لہو کی تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتے. شطرنج کے بارے میں لکھا کہ بعض کھیل جو صراحتاً ممنوع کیے گئے, اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرما دیا ہے, اگرچہ ان میں کچھ فوائد بھی بتلائے جائیں. مثلا شطرنج جس کو چیز کہتے ہیں, چوسر وغیرہ, اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ جوا بن جاتا ہے. اگر لین دین ہو تو یہ جوا بن جاتا ہے, اگر لین دین نہ ہو تو یہ صرف چوسر اور شطرنج رہے گا, ورنہ یہ جوا بن جائے گا. اگر اس کے اندر آپ نے شرطیں لگا کر کے جو ہے وہ مال کا بھی معاملہ کر لیا تب یہ جوا بن جائے گا. اور قطعی حرام ہیں, یعنی مثلا شطرنج چوسر وغیرہ اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ جوا اور قطعی حرام ہیں, اور یہ نہ ہو محض دل بہلانے کے لیے کھیلے جائیں. یعنی دل بہلانے کے لیے کھیل رہے ہیں, جوا نہیں ہے اس کے اندر, تب بھی حدیث میں ان کو منع فرمایا گیا. یعنی جوا نہیں بھی ہیں تب بھی ان کو حدیث کے اندر منع فرمایا گیا ہے. صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نر شیر یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں, سوئن بلڈ. اچھا, کچھ علامہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اور باقاعدہ اس کو عمومیت دے دی معاشرے کے اندر کہ خنزیر حرام ہے, بے شک حرام ہے, لیکن جس طرح شیر حرام ہے اسی طرح خنزیر بھی حرام ہے. تو جس طرح تم شیر سے نفرت نہیں کرتے, شیر کو نجس نہیں کہتے, خنزیر کو کیوں نجس کہتے ہو؟ خنزیر کی ہر چیز جو ہے وہ حرام, اور اس کو جو ہے وہ دور دور کیوں کرتے ہو؟ بھائی شیر کی تو ہر چیز کو تم دور دور نہیں کرتے, شیر کا تو مجسمہ بھی گھر میں رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو بھی حلال, اس کی کھال سے جو ہے وہ بھی کچھ بنا لیں گے. خنزیر کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کیوں کیا ہوا ہے تم نے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ خنزیر کے خون سے رنگے, خنزیر کو کھانے کے نہیں, جب گویا کہ وہ خنزیر کھا رہا ہے, نہیں, خنزیر کے خون کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے. شیر کے خون میں ہاتھ ڈالنا نہیں فرمایا, گیدڑ کے خون میں ہاتھ ڈالنا نہیں فرمایا, خنزیر کے خون میں, کیوں؟ خنزیر کی ہر چیز نجس ہے. تو اس کو نجاست سے تعبیر کیا کہ اس کے تم پی نہیں رہے اس کا خون, یعنی کہ پینے سے منع کر رہا ہوں, کھانے سے منع, وہ تو حرام ہے, لیکن اس کا خون بھی نجس ہے. اس کے اندر ہاتھ ڈالنا نجاست کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے. اسی طرح ایک روایت میں شطرنج کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح کبوتر بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا. ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر دیتی ہے, ظاہری وجہ ان کی یہ ہے. اچھا, ایک اور چیز, ایک اور حدیث اسی تحت حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ و سارنگی کو حرام کیا ہے. شراب, جوا اور طبلہ بجانا, سارنگی بجانا, میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے. اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اب ہمارے نزدیک نشہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے. जुए से नशा होता है कोई, जुए में तो पैसे डूबते हैं, जुए से तो आपका कमर्शियल लॉस होता है, नशा तो नहीं होता, नशा तो शराब पीने से होता है या हेरोइन पीने से होता है, चर्स पीने से होता है, और तबला और सारंगी से भी कोई नशा नहीं होता। जिस तरह शराब से नशा समझा जाता है, तबला बजाने से तो कोई नशा नहीं होता। लेकिन ये चीजें जो हैं वो इंसान के लिए नशे का सबब बन जाती है, इन चीजों का भी एक नशा होता है। तो हर नशा वाली चीज हराम है, जिस चीज का भी नशा इंसान को लग जाए वो उसको उसके दीन से दूर करने का सबब बन जाएगी, अल्लाह ताला से गाफिल करने का सबब बन जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, सवाए कुरान या दीन की बातें, दीन का इल्म, दीन की किताबें, इंसानों को फायदा पहुंचाने की अमल, इंसान को उसका नशा लग जाए, दूसरों को दूसरों की खैर ख्वाही का नशा लग जाए, दीन का इल्म हासिल करने का नशा लग जाए, दीन पर अमल करने का नशा लग जाए, अल्लाह की मोहब्बत का नशा लग जाए, ये भी तो नशा है। लेकिन ये हराम है नशा, अल्लाह से गाफिल कर देने वाले जो नशे लग जाए, चाहे वो शराब पी करके लगे, चाहे वो किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होकर के लगे, जैसे वीडियो गेम्स है। तो अब वीडियो गेम्स को जायज करने के लिए शरिया कंप्लायंट रूल्स आ रहे हैं, कैसे रूल्स आ रहे हैं ये भी हम आपको पढ़ के बताएं। नंबर वन, देयर इज नो म्यूजिक इन द गेम। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा इसलिए कि है 12। देयर इज नो ऑब्सेनिटी एंड न्यूडिटी इन द गेम, कोई बेशर्मी की बातें ना उसके अंदर। द गेम डज नॉट अप्रूव ऑफ विचक्राफ्ट नॉर ग्लोरिफाई विचेस सोर्सरर्स मैजिशियंस, यानी जिसके अंदर मैजिशियन सोर्सरर्स ये जादू वगैरह की चीजें, विचक्राफ्ट वगैरह जिसके अंदर ना। द गेम डज नॉट अप्रूव ऑफ हराम एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, ड्रग्स, वायलेंस, किलिंग, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये ना उसके अंदर। चौथा, पांचवा, द गेम इज नॉट बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ इस्लाम और मुस्लिम्स, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग पॉइंट्स फॉर स्ट्राइकिंग मक्का, जैसे पबजी के अंदर हमने सुना कि वहां पर जो है वो काबतुल्ला जैसी एक शक्ल उन्होंने बना दी थी, उसको स्ट्राइक करने से जो है वो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, या जो है वो बुत किस्म की चीज बनाई हुई है उसके सामने जो प्लेयर है वो जाकर के सजदा करता है तो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। बनाने वाले ने ऐसे बनाया, पहले भी बात हो चुकी है इसके ऊपर, बनाने वाले ने ये गेम बनाया, मुसलमानों की गैरत जब थोड़े बड़ों को पता चला कि उनके बच्चे ये गेम खेल रहे हैं, उनकी गैरत जाग गई, जैसे कि जागती है हमारी। फिर उन्होंने हाय वावेला मचाना शुरू किया, फतवे आने शुरू हो गए। पबजी वालों ने कहा मसला ही कोई नहीं, पंजाबी में क्या कहते हैं, पंजाबी में बड़े मजे मजे के स्टाइल होते हैं बात करने के, गल ही कोई नहीं, कोई गल नहीं, सही है, हम हटा देते हैं, मसला कोई नहीं, काबतुल्ला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने काबतुल्ला निकाल दिया, अच्छा वो बुध को सजदा, कोई बात नहीं, बुध को सजदा निकाल, आप खेले हमारा गेम, आपको कोई मसला ही नहीं, आपके दीन को कोई प्रॉब्लम होती, हम हटा देते हैं। मुसलमान की गैरत जो जागी थी फिर सो गई, राइट, जो हाय वावेला मचाना था हाय वावेला खत्म हो गया, और फिर पबजी के ऊपर लग गए, और वो जिन्होंने पबजी बनाया है वो मजे कर रहे हैं, देखो इन बेवकूफों को, हमने जो असल मकसद लेना था ना वो तो हमें मिल रहा है, असल मकसद कि ये अल्लाह से गाफिल हो रहे हैं, ये दीन से गाफिल हो रहे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन, हर नशा दिलाने वाली चीज, लफ्ज इस्तेमाल होता है आज, व्हाट्सएप एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, नशा, नशे से तो ये लोग नहीं निकल सके ना, ये काबा कब निकाल दिया हमने, अच्छा डाला क्यों था, अगर तुम्हें पता नहीं था क्या, 9/11 के बाद कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं हो सकता कि जिसको मुसलमानों का नहीं पता, जिसको इस्लाम का नहीं पता, और इतने बड़े जो गेम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इतना अच्छा खासा पढ़े लिखे दुनिया के बारे में उनके अवेयरनेस होती है, उनको काबतुल्लाह का पता नहीं था, डाला क्यों था पहली दफा में, बुत को सजदा डाला क्यों था पहली दफा में, नहीं समझ में आती हमारे, नहीं हम नहीं सवाल करना चाहते ये सारे, क्योंकि वी आर टू बिजी इन ग्रास ईटिंग, घास चरने के अंदर हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, वी टेक प्राइड इन इट। उन्होंने निकाल दिया, भाई एडिक्शन तो तुम्हारी खत्म नहीं हो रही ना, तुम तो हो एडिक्ट, लगे रहोगे हमारे गेम के अंदर। तो बात वही है, इफ यू कैन बीट देम ज्वाइन देम। एडिक्शन जो है वो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, ना अब्बा हुजूर छोड़ सकते हैं, ना बेटे हुजूर को छोड़वा सकते हैं, ना बेटे की ऐसी तरबियत कर सकते हैं कि बेटा वीडियो गेम्स आर नॉट अलाउड। कैसे कहें अब्बा हुजूर खुद खेलते हैं वीडियो गेम्स, बेटे को कैसे कहें कि इट्स नॉट अलाउड। तो चलो शरिया कंप्लाइंट बनाते हैं इस वीडियो गेम को किसी तरीके से। यानी हद हो गई बेगैरती की। औलाद की तरबियत इंसान के वक्त का ज़िया, ये कोई हैसियत नहीं रखता, ये फतवे हैसियत रखते हैं सारे के सारे। म्यूजिक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, डांसिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नशा हो चाहे किसी और चीज का, म्यूजिक एंड डांसिंग नहीं होनी चाहिए बस उसके अंदर। और सुने, द गेम इज नॉट बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ इस्लाम। सुने जी, हेट्रेड ऑफ इस्लाम व्हाट डू यू मीन मैन, हेट्रेड ऑफ इस्लाम नहीं होनी चाहिए। द गेम डज नॉट इन्वॉल्व बाउइंग टू एनी बीइंग अदर देन अल्लाह। द गेम डज नॉट ग्लोरीफाई द कुफार एंड शो प्राइड इन बिलोंगिंग टू देम। वीडियो गेम के यानी गेम के अंदर जो है ना वो कुफार को ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं होनी चाहिए। द गेम डज नॉट प्रोमोट ब्रेकिंग द लॉ। द गेम डज नॉट सैंक्टिफाई साइंस सिंबल्स ऑफ कुफार शैतान सच एज क्रॉस बेफोमिट वगैरह, पता नहीं बेफोमिट क्या होता है। द गेम डज नॉट गेट इन द वे ऑफ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी सच एज एस्टैब्लिशिंग प्रेयर्स। नमाज के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो चलें पबजी के अंदर एपिक अजान अलार्म भी लगा दें, जब अजान का टाइम नमाज का टाइम होगा तो अजान का अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। वेरी शरिया कंप्लायंट, राइट, परफेक्ट। द गेम शुड नॉट कॉज एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन डीसेंसिटाइज टूवर्ड्स दिस एक्ट। नफसियाती बुराइयां नहीं आनी चाहिए जैसे किसी को कत्ल कर देना। बाकी नफसियाती बुराइयां, घर का काम ना करना, ये कोई नफसियाती बुराई नहीं है। बीवी को उसका हक ना देना, ये कोई नफसियाती बुराई नहीं है हमारे नजदीक। औलाद को उसका हक ना देना, ये हमारे नजदीक नफसियाती बुराई नहीं है। दीन का इल्म हासिल ना करना, ये हमारे नजदीक नफसियाती बुराई नहीं है। अपने साथ रहने वालों को अजियतें पहुंचाते रहना, यह हमारे नजदीक नफसियाती बुराई नहीं है। क्या है नफसियाती बुराई? शूट कर दो जब किसी को, तब वो कहलाएगी नफसियाती बुराई। हम खुद नफसियाती मरीज बन चुके हैं और दीन का इल्म हासिल करके हमारा बाल भी नहीं बीखा जा रहा है। दीन का इल्म भी हासिल करने के बाद हमें दीन की नहीं समझ में आ रही है। इस दीन का मकसद क्या है? चक्कर लगाना, खाली चक्कर काटना, किसी घर के चक्कर काटो बस, और साथ साथ इंसानों को चक्कर देते रहो। ये है हमारा दीन, टक्करें मार मार के दूसरों को टक्करें मारते रहो, और औलादे भी पीछे पीछे एक दूसरों को टक्करें मार मार करके। ये दीनदारों की औलादें। तो ये सब कैसे होगा? असल मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं जा रही है? हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कता बुर्द करने के इतने ज्यादा रसिया क्यों हो गए हैं? अगर कोई आगे की बात भी करे ना, हम उसके दुश्मन हो जाते हैं, हम उसके साथ कराहियत करना शुरू हो जाते हैं, और बस ना चले कि हम उसको अवॉइड करके रास्ता पेंतरा बदल करके इधर से उधर निकल जाएं। बात ही समझ में नहीं आ रही हमारे। तो घर की जो औरत होती है उसने अपने औलाद को दीन का मिजाज देना होता है। मिजाज सिर्फ चंद इबादतें नहीं सिखा देनी होती हैं, चंद कहानियां नहीं बता देनी होती हैं ना। तो आखिरी बात जो हमने पढ़ी थी इसके अंदर कि जो घरेलू औरत होती है शी ओवरसीज फैमिली लाइफ जनरली, पूरी फैमिली की जिंदगी को वो एक पायराना निगाह से देख रही होती है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या नीड है, इसने इन सारी चीजों को देखना होता है। मैनेजिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फैमिलीज रूटीन स्केड्यूल एंड कैलेंडर। फैमिली के जो उसके, क्योंकि पीछे हम हदीस पढ़ चुके हैं इसी के अंदर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वल मरअतु राइयतुन अला बैत बालिहा व वलदिही, कि औरत जो होती है वो राइया होती है अपने शौहर के घर की। वैसे तो हर जगह फी बैतिहा, औरत का घर, औरत का घर, औरत का घर, यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फी बैत बालिहा, अपने शौहर के घर की राइया होती है वो, और अपनी औलाद की राइया होती है। तो जो उसकी रईयत के अंदर हैं, उनका रूटीन उसको देखना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, स्केड्यूल देखना होता है, कैलेंडर बनाना होता है, विच इवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट विद विच, किसका काम जो है किसी दूसरे फर्द घराना से कॉन्ट्राडिक्ट करता है या कॉन्फ्लिक्ट करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करनी होती है उसको। चिल्ड्रंस क्लोदिंग हैज इट्स ओन सिस्टम, बच्चों का जो कपड़े पहनने वाला पूरा सिस्टम होता है, इस बच्चे के ये कपड़े हैं, उससे ऊपर वाली है उसके ये कपड़े, उससे ऊपर वाली है वाला है उसके ये कपड़े, तो उसका एक अलग सिस्टम होता है, सोर्टेड एंड स्टोर्ड बाय साइज एंड सीजन। उसको भी सोर्ट करके घर के अंदर रखें कि भाई जो गर्मी के कपड़े हैं तो गर्मी का सीजन अगर चल रहा है तो वो ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, अभी सर्दी के कपड़ों की जरूरत आने में जो है वो चंद महीने लगेंगे, तो वो पीछे की तरफ स्टोर कर दें। साइजेस के हिसाब से हर बच्चे के लिए अलग छोटा सा एक जगह बना दें, ये इस बच्चे का ड्रॉअर है, ये इस बच्चे का, पूरी पूरी अलमारी की जरूरत नहीं होती या होनी नहीं चाहिए कम से कम। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलिजेंट होम मेकिंग सिस्टम्स। होम मेकिंग सिस्टम, ये घर बना रही होती है घर की जो औरत होती है, इंटेलिजेंट होम मेकिंग सिस्टम्स की ये चंद मिसालें हैं खाली। शी ऑल्सो ओवरसीज फैमिली लाइफ, ये हो गया। What are the kids' activities? ये ऊपर का मैंने पढ़ लिया था एक्चुअली। What are the kids' activities? She syncs the calendars for her own activities, the kids and her husband's. उसके शोहर की क्या एक्टिविटीज हैं, क्या जरूरियात हैं, क्या उसकी और उसने काम करने होते हैं, बच्चों की अलग जरूरियात और अलग उसकी स्केड्यूल होता है, स्कूलिंग का है, स्टडीज के स्केड्यूल है, कारी साहब आ रहे हैं उनका स्केड्यूल अलग है, कोई और है उनके साथ पढ़ना है उनकी स्केड्यूल अलग है, इन सबको उसने सिंक करना होता है आपस में ना, एक दूसरे से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना होते रहे। अब ये सारा काम करने के लिए पीछे हम बात कर चुके हैं कि उसको अपने शौहर की मोरल सपोर्ट कम से कम चाहिए होती है, कम से कम मोरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट चाहिए होती है। कम से कम मोरल सपोर्ट का मतलब क्या कि शौहर अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जॉब के ऊपर है या ट्रैवल कर रहा है, तो वो फिजिकल सपोर्ट दे नहीं सकता, मौजूद नहीं है, इस वजह से वो मादी सपोर्ट बकायदा खुद उसके अंदर हाथ नहीं बटा सकता क्योंकि वो फिजिकली मौजूद नहीं है। अगर फिजिकली मौजूद है तो हाथ भी बटाए, जैसे कि बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, रट गया हमें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के कामों में हाथ बटाया करते थे, लेकिन रट गया है अंदर दाखिल नहीं होता। अच्छा, हमें भी हाथ बटाना चाहिए, तो हाथ भी बटाए, लेकिन अगर हाथ बटाना मुमकिन नहीं है उसके लिए तो कम से कम मोरल सपोर्ट तो देना कि जो दूसरे तंग करने वाले लोग, उसको जो है वो डीमोटिवेट करने वाले लोग जो हैं, घर के अफराद हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जैसे आ जाती हैं, एक कहने लगी, उन्होंने मैसेज लिखा हमें कि जी मैं अपने घर के अंदर माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं और मेरी बहू के साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत खुश हैं हम लोग, लेकिन मोहल्ले की खवातीन आती रहती हैं, कभी कोई आकर के कह रही है क्या तुम अपनी बहू से ये वाला काम करवाती हो कि नहीं करवाती हो, तुमने बहू को ऐसे क्यों इतना आजाद क्यों छोड़ा हुआ है, बहू को तुम जो है वो फोर्स क्यों नहीं करती ये वाला काम करने के लिए,
और तुम ऐसे किया करो, तुम वैसे किया करो। तो अब वो चूंकि सिलसिले के अंदर दाखिल हैं और अपने मामलात के अंदर मशवरा करती हैं, तो उन्होंने लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दीन के अंदर आदाब और अखलाक भी सिखाए जाते हैं। यहां भी आप किसी के साथ बदतमीजी से बात ना करें और किसी को जो है वो तड़ाख करके जवाब ना दे दें कुछ। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था गालिबन कि जी वो जो मुझे आकर के इतने सारे मोहल्ले की औरतें मशवरा देती रहती हैं, तो मैं क्या करूं उनके साथ। तो मैंने उनको जवाब लिखा, आप बिल्कुल इग्नोर करें उनकी बातों को, बिल्कुल इग्नोर करें, और बजाय इसके कि आप उनकी सुनाएं, आप उनको सुनाती क्यों नहीं है। आप उनको बताएं कि भाई घर के अंदर रहने का सही तरीका क्या होता है, और हमारे मशायख, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की क्या तालीमात है। आप डिफेंसिव होने की बजाय इस तरीके से, ऑफेंसिव का मतलब ये नहीं कि मारना पिंडना शुरू कर दें, चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, ऑफेंसिव का मतलब आप उनको दावत दें, मदऊना बने, दाई बने। अल्हम्दुलिल्लाह दाई बनी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी और फरमा दी। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो कि रिश्तेदार नहीं भी हैं, वो भी इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जरा तसव्वुर करें, जो रिश्तेदार होते हैं वो तो अपना हक समझ करके इंटरफेयर कर रहे होते हैं मियां बीवी के दरमियान, एक से एक उल्टे सीधे मशवरे। अहले मशवरा है नहीं, इल्म समझ अकल कुछ है नहीं, दीन दुनिया का भी पता नहीं है, आ जाते हैं मशवरे देने के लिए। अब उस औरत को जो है ये बचाना शौहर का काम है, खुसूसन रिश्तेदारों से। चले पास पड़ोस के साथ तो शौहर ने कुछ नहीं करना ना, क्योंकि शौहर की वो रिश्तेदार तो है नहीं पास पड़ोस की औरतें, वहां पर तो औरत को खुद उनको रोकना पड़ेगा, काटना पड़ेगा उनको। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं खुसूसन ससुराल वाले, तो ससुराल वालों के सामने तो वो औरत कोई उमूमी तौर पर बोल भी नहीं सकती, एक जंग खड़ी हो जाएगी वहां पर अगर ससुराल वालों को एक लफ्ज भी बोल दिया इस औरत ने। तो कौन बचाएगा इसको ससुराल वालों से? शौहर की जिम्मेदारी है बचाना, शौहर की जिम्मेदारी है सपोर्ट करना। तब बदतमीजी के साथ नहीं, तमीज के साथ, समझ के साथ। लेकिन हमारे यहां तो साथ मिलकर के जो है वो बीवी को कोसना शुरू कर देते हैं, बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बस तुम्हारा काम है किसी तरीके से मेरी मां को खुश करो, चाहे अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, शेख नाराज हो, हु केयर्स, मेरी मां खुश होनी चाहिए, बस। ये है हमारा दीन। अल्लाह, रसूल, शेख, ये सारी चीजें तो कोई दीन नहीं की जरूरत, कोई दीन का ताल्लुक ही नहीं है नाउज बिल्ला सारी चीजों के साथ। दीन का ताल्लुक किस चीज है? मेरी मां खुश हो जाए और मेरा बाप खुश हो जाए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से खुश हो जाए। ऐसे आकर के जाए वो ऑर्डर देकर के चले जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? कुछ गुस्सा होते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत बोलते हैं। शुरू में कुछ पिक्चर खींची थी ना मुआशरे की, वो भी याद कर लेनी चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों क्यों हम इन बातों को इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसके ऊपर इन डॉट्स को ज्वाइन करने की जरूरत है। ऐसे नहीं खामखा आपको देख करके गुस्सा आ रहा है, वैसे तो आ रहा है, खामखा नहीं आ रहा, वजह से आ रहा है। व्हाट आर द किड्स एक्टिविटीज? शी सिंग्स द कैलेंडर्स फॉर। अच्छा, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इस औरत को, बगैर सपोर्ट के ये सारी चीजें नहीं कर सकती है। और फिर उसके बाद जब सपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद उसको वक्त की जरूरत पड़ती है, वक्त चाहिए सारे काम करने के लिए। अब या तो शौहर साहब ने बाहर से तो सपोर्ट कर लिया, लेकिन अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात का एक बर्डन डाल दिया बीवी के ऊपर, हर वक्त जो है वो फ्रेश खाना चाहिए मुझे, हर वक्त जो है वो मुझे ऐसी जो है वो चीजें चाहिए, और ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज ऐसी होनी चाहिए। अब वो इन्हीं कामों के अंदर लगेगी, तो उसके पास टाइम नहीं आएगा ये सिंक करने का, सारी एक्टिविटीज को, सारी चीजों को मैनेज करने का, प्लान करने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम नहीं आएगा उसके पास। तो सपोर्ट इस तरीके से भी देनी होती है कि उसके लिए टाइम भी फारिग करना है अपनी बीवी का। और फिर तीसरी चीज, औरतें खुश हो रही होंगी, खूब उनके सपोर्ट की बातें हो गई, नहीं, आप भी नहीं बचेंगी, क्योंकि आखिर में जब आपको इतना सपोर्ट मिल गया, अब जो वक्त है ना वो आपने खुद मैनेज करना है। अब आप जो है वो इतना माशाल्लाह, इधर से भी सपोर्ट, उधर से भी सपोर्ट, इधर से भी लोग जो है वो छट गए, इंटरफेयर करने वाले उधर से भी छट गए, अब आप फारिग हैं। अब आप उस टाइम को किधर लगा रही हैं? फोन के ऊपर लगा रही हैं जी, तीन तीन घंटे रोजाना अम्मा से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है फलानी चीज पे, और कुछ नहीं तो चलो जी अब जो है वो वीडियोस देख रहे हैं बैठ करके। यूट्यूब तो एक दलदल है, और पता नहीं टिकटॉक भी कोई आ गया है। ऐसी ऐसी नमूने मौजूद हैं, देखना तो दूर की बात, बनाने के अंदर अपना सारा दिन लगा रही हैं। अपनी वीडियोस बना बना करके ऊपर अपलोड कर रही होती हैं, या जो पर्दे वाली होती हैं, दीनदार होती हैं, वो अपनी नहीं बना रही होती, वो दूसरी चीजों की बना करके अपलोड कर रही होती हैं हर वक्त। घर की मैनेजमेंट के लिए टाइम वो तो आपने इस चीज के अंदर लगा दिया, अब कहां से टाइम लगाएंगी घर के मैनेज करने के अंदर और सिंक करने के अंदर। और रिश्तेदारों से बातचीत, ये कौन सा मां बाप के हुकूक में आ गया है कि रोज आपने अपनी अम्मा से जो है वो दो घंटे बात करनी है। बेटे के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि जी मैंने को थोड़ी घर संभालना तो मैं अपनी अम्मा से दो घंटे रोजाना बात करूंगा। नहीं, सीखे इन बातों को। ये मां बाप के हुकूक में नहीं आता कि ये तीन घंटे आप रोजाना मां बाप से फोन में बात करते हैं, दो घंटा। इससे घर के अंदर शर फैलता है आपके। वो दूर बैठे जो है वो आपको ऐसे ऐसे मशवरे दे रही होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं कि घर के अंदर क्या हो रहा है, घर की क्या जरूरियात है, घर के क्या तकाजे हैं, किस चीज में आपको वक्त लगाना था, आपके औलाद की तरबियत के लिए आपके पास वक्त है कि नहीं है। बैठ करके दूर से जो है वो मशवरे दे रही है, आप जो है वो मां बाप का हक समझ करके हर मशवरे को आमीन आमन्ना और सदकना। एक खिचड़ी पक रही है पूरे घर के अंदर, फसाद का सबब बन जाता है ये। हर वक्त जो है वो मां बाप से बात करना है, या बड़ों से बात करना है, या बहन भाइयों से बात करना, या दोस्तों से बात करना, ये फसाद का सबब बनता है ये घरों के अंदर। और शैतान जो है ना वो दीन बना करके इनको हमसे करवा रहा होता है। ये तो दीन है तुम्हारा, दीन का तकाजा है कि तुम बात करो। ये शैतान है जो कि दीन बना करके ये काम करवा रहे हैं हमसे। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं इस शैतान की बात मान मान करके। सीखना हमने है नहीं। शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड, ये जो बीवी होती है ये अपने शोहर को सपोर्ट कर रही होती है, इंस्पायर्स हिम व्हेन ही इज फीलिंग डाउन, उसका हौसला बंधाती है ये, यानी ये उसके कामों में से एक काम है। जब वो इसको सपोर्ट करेगा, इसके मां बाप इसको लानतान करेंगे। बीवी को सपोर्ट करते हैं ना शोहर, क्या पहला लकब उसको मिलता है? जन मुरीद, जन मुरीद। अब अगर वाकई जन मुरीद हराम में सपोर्ट कर रहा है, भाई अल्लाह ताला क्या जवाब देगा? लेकिन हलाल में भी सपोर्ट कर रहा होता है ना, उधर भी जन मुरीद ही कहा जाता है इसको। और फिर उसके बाद जहन्नुम में जाएगा, ये तो बर्बाद होगा, इसकी तो नस्लें खराब हो जाएंगी, इसने तो दीन को समझा ही कोई नहीं है, ये तो अल्लाह रसूल को नहीं जानता, ये तो कुरान हदीस को नहीं जानता, ये तो फलाना नहीं जानता, ढिमकाना नहीं जानता, ऐसे ऐसी गालियां सुनने को मिलेंगी फिर उसके बाद। तो उस वक्त शौहर जो है ना उसके हौसले एकदम से पस्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें सुन करके डायरेक्ट जब आपको इस तरह की फायरिंग हो रही हो और आपके अपने करीबियों से फायरिंग हो रही हो, ये सबसे बड़ी आजमाइश होती है। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी आजमाइश क्या थी मक्का मुकरमा के 13 साल के अंदर? करीबी रिश्तेदारों से यह सब कुछ सुनने को मिलता था। ये आजमाइश के दिन थे जब रिश्तेदारों से, सगों से यह सब कुछ सुनने को मिलता था, और ये हरकतें होती थी उनसे। ये नबी अलैहिस्सलाम, वरना नबी अलैहिस्सलाम को कोई आग में नहीं फेंका जा रहा था उठा करके। नबी अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में नहीं डाला गया था। ये आजमाइश थी नबी अलैहिस्सलाम की, और सबसे बड़ी आजमाइश नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर थी। तो अब बीवी जो होती है वो हौसला बंधाती है, वो इसको इंस्पायर करती है, वो उसको अच्छे बोल बोलती है। एंड सीज टू हिज कंफर्ट एंड प्लेजर, उसके आराम सुकून के लिए ये ख्याल करती है। शी हैज फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी अलग एनर्जी होती है, फेमिनिन यानी औरत की ताकत कुवत एक अलग शक्ल की होती है। इसके ऊपर हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं जब हम फेमिनिज्म वाले आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि फेमिनिज्म एनर्जी, फेमिनिस्ट एनर्जी क्या चीज होती है, असल में क्या चीज होती है। ये उस औरत को सिन्फ आहन की तारीफ से बाहर नहीं निकाल देती, सॉरी सिन्फ नाजुक की तारीफ से बाहर नहीं निकाल देती, सिन्फ आहन नहीं बना देती उसको, फेमिनिज्म एनर्जी का मतलब सिर्फ आहन बन जाना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल एनर्जी जो उसके अंदर होती है, जो कि मर्द में होती ही नहीं है। अल्लाह ताला ने डाली नहीं मर्द के अंदर जज्बात की एनर्जी, ताकत। ये जज्बात वाली ताकत अल्लाह ताला ने औरत में डाली है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे का ऐसे ख्याल रखती है, अपने घराने का ऐसे ख्याल रखती है, अपने शौहर का ऐसे ख्याल रखती है, हत्ता कि अपने दूसरे रिश्तेदारों का ख्याल रखती है। यहां पर उस एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि ऐसे डाउन शौहर को जो है वो दोबारा से खड़ा करने के। तो शी हैज फेमिनिन एनर्जी एंड एग्रीएबल नेचर। ये शेरनी की तरह नहीं रहती अपने शौहर के साथ, हर चीज का जवाब मौजूद है, हर चीज के ऊपर दलाइल मौजूद है, उल्टे सीधे। शौहर को कुछ आता नहीं तो ये अपने दलाइल इस्तेमाल कर रही होती है, आओ जरा दलाइल वाले के सामने, पता लगेगा तुम्हारे पास क्या दलाइल है। लेकिन ये शेरनी एटीट्यूड जो होता है ना, हर चीज का जो तलाख करके जवाब देना, हर चीज को जो है वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करना, ये इंसानियत नहीं होती किसी के साथ भी। और औरत को तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत वाला बनाया, उसके अंदर तो और भी ज्यादा ये चीज नहीं होती, तो उसमें एग्रीएबल नेचर होती है, कॉम्प्रोमाइज कर जाती है बेचारी, मुस्कुरा करके, मैं तो बस बता रही थी आपको, बाकी आप हैं शौहर, मैं शौहर नहीं हूं, मैं शौहर का रोल प्ले करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने एक दलील रख रही हूं, एक बात रख रही हूं, बस तमीज से बात करना, इज्जत से बात करना। एन एटीट्यूड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द मैन, मोहब्बत और इज्जत का एटीट्यूड अपने शौहर के लिए। शी सीज हिज वैल्यू एज हर हस्बैंड, उसको अपना शौहर जो देख रही होती है तो उसके अंदर उसको एक वैल्यू, एक कदर कीमत नजर आ रही होती है अपने शौहर के अंदर, कि ये शौहर जो है वो मेरे लिए क्या हैसियत रखता है, क्या मुकाम है शौहर का। और जो इनकी असल मेहनतें हैं, शयातीन की जो मेहनतें हैं, वो क्या कि औरत के लिए शौहर की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे पिछली दफा ऐसा, जैसे आपने सुना होगा, हैं, खूब पढ़ो लिखो ताकि जब वो कुछ करे ना ऐसी बात जो तुम्हें पसंद ना हो, इसको लात मार करके या तो उसको घर से बाहर निकाल दो या तुम खुद घर से बाहर चले जाओ और अपने टांगों पे खड़ी हो जाना, अपनी पैरों पे खड़ी हो जाना, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, इतना तुम्हें जबरदस्त प्रोफेशनल बना दिया है, शौहर की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, शौहर की कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ भाई बस ठीक है जी, एक घर चलाना है, अभी तक एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका में तो वो भी खत्म हो गया, यूरोप में और सारी जगहों पर, पाकिस्तान में एक चल रहा है, तो हाँ जी बस नाम का शौहर, नाम का एक घराना है, वरना वो अपनी जॉब कर रहा है, ये अपनी जॉब कर रही है, वो अपनी जिंदगी गुजार रही है, अपनी जिंदगी गुजार रही है, इसमें शौहर की वैल्यू कहां गई, खत्म हो गई। और माशाल्लाह इसको भी हम शरिया कंप्लाइंट करके, इसको भी शरिया कंप्लाइंट करके, हाँ जी पढ़ो शरिया कंप्लायंस के साथ पढ़ो, प्रोफेशनल बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जो करना है करो, बुरका पहन के कर लो, शरिया कंप्लायंट। जिस तरह वीडियो गेम को शरिया कंप्लायंट बनाने के अंदर आगे आगे भागे चले जा रहे हैं, उसी तरीके से प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेशन को शरिया कंप्लायंट बना करके आगे आगे चलो भाई, शरिया कंप्लायंट करियर एजुकेशन, करियर ओरिएंटेशन। तो शी सीज हर हिज वैल्यू एज हर हस्बैंड एंड शोज हिम द रिस्पेक्ट ही इज ड्यू। नफ्सियात एक होती है एक इंसान की ना, जब किसी को किसी की जरूरत नहीं है, अब वो क्यों उसकी जो है वो, यानी वो आपको लड्डू खिलाता रहे, आप उसकी हां भी ठीक है बहुत अच्छे हैं आप, जहां उसने लड्डू बंद किए कोई आपके मिजाज के खिलाफ, तो अब तो एक जरूरत के तहत, नजरिया जरूरत भी जिसको कहते हैं, अब आप उसके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखेंगे ना। जब वो आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात कर रहा है और अब उसकी कोई जरूरत भी नहीं, आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं, अब क्यों रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, ये नहीं समझ में आता हमारे शरिया कंप्लायंट वालों को। इंसानी नफ्सियात, और भाई दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर,
उनको सामने रखें. She understands what it takes to sustain a stable long-term relationship in marriage.
ये शादी जो है वो दो दिन का मुता नहीं होता, मुता किया और बाहर निकल आया उसके अंदर से. ये एक लॉन्ग टर्म, ये दुनिया में भी चलती है मौत तक, और ये आखिरत में भी चलेगा. ये रिश्ता ये जन्नत का रिश्ता है, इतनी लॉन्ग टर्म, यानी जिसका कोई खात्मा ही कोई नहीं. एक दफा मर गए इस रिश्ते के साथ, जन्नत में भी ये रिश्ता चलेगा, कोई इसकी इंतहा है ही नहीं. इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसको कैसे सस्टेन करना? आसान काम है इसको सस्टेन करना. जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपने छीन लिए जिस भी लेबल लगा करके. अब कह रहे हैं जी सस्टेन करो, साथ गुजारो, जैसे भी सारी जिंदगी गुजारनी है. कैसे गुजारेगी वो सारी जिंदगी जब इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है किसी चीज के? एंड इज विलिंग टू पुट इन दैट वर्क. इसको सस्टेन करने के लिए जो मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और जो अपने मिजाज की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कुर्बान करना पड़ता है, तो वो उसके लिए तैयार हो. ये औरत होती है ये. She finds little and big ways to show him an appreciation for the hard work he puts in for her. जो मर्द जो मेहनत कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा है, चाहे वो फिजिकल मजदूरी कर रहा है. फिजिकल मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती है? दिहाड़ी मिलती है उसको, दिहाड़ी, इसको तनख्वाह भी नहीं कहते. और जो मेंटल मजदूर होता है, जैसे कि आज हम हैं कॉर्पोरेट वर्कर्स, यहां पे बैठा हुआ कोई फिजिकल मजदूर शायद एक आधो, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स होते हैं वो कौन सी फिजिकल मजदूरी कर रहे होते हैं जी? एसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, चाहे किराए की गाड़ी हो चाहे अपनी गाड़ी हो, उसमें वापस आ रहे होते हैं, कौन सी फिजिकल मजदूरी कर रहे होते हैं? नहीं, वो मेंटल मजदूरी कर रहे होते हैं. उनको दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी नहीं मिलती उनको, जो है ना वो थाउजेंड, उनको ग्रैंड्स मिलते हैं, ग्रैंड्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिलते हैं उनको, रियाल्स मिलते हैं उनको, मेंटल मजदूरी करने के ऊपर. तो मेंटल मजदूरी जो होती है वो फिजिकल मजदूरी से ज्यादा अहम और ज्यादा वर्दी होती है. तो वो औरत जो होती है, बीवी होती है, अपने शौहर की मेंटल मजदूरी को अप्रिशिएट कर रही होती है. अप्रिशिएशन फॉर द हार्ड वर्क ही पुट्स इन फॉर हर एंड द फैमिली. इन अ हेल्दी मैरिज शी गेट्स दिस बैक. जो अच्छा अज़दवाजी रिश्ता होता है, मियां बीवी के दरमियान हेल्दी सेहतमंद अज़दवाजी रिश्ता होता है, शी गेट्स दैट बैक टू. यानी ये जो अप्रिसिएशन कर रही है, ये जो इज्जत दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, लव दे रही है अपने शोहर को, ये उसको रेसिप्रोकेशन में मिल भी रहा होता है. फरमाती हैं एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल, वापस भी मिल रहा होता है. यानी शौहर भी इसको लव दे रहा होता है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा होता है, इसको जो है वो सपोर्ट दे रहा होता है, और इसकी मेहनतों को जो घर के अंदर ये डाल रही होती है उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है. इसको कहते हैं हेल्दी सेहतमंद अज़दवाजी रिश्ता. लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हाल है हमारे मुआशरे का, क्योंकि डायग्नोसिस हमने करी नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी तो वो भी नहीं कर रहे, इस वजह से इस वक्त हजार में से नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 10,000 में से एक रिश्ता होगा जो कि हेल्दी रिलेशनशिप कहलवाने के काबिल हो. एक घराना 10,000 में से कोई एक होगा जो कि हेल्दी रिलेशनशिप वाला कहलाने के काबिल हो. तो अब क्या करें जब 999 या 9999 जो है वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं? वहां पर क्या चीज आती है? वहां पर ईमान आता है, वहां पर दीन आता है, ईमान आता है. यस एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल, लेकिन नॉट नेसेसरली फ्रॉम द हस्बैंड और द वाइफ. स्पाउस से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही, लेकिन अल्लाह ताला से रेसिप्रोकेशन मिलेगी, 100% मिलेगी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, कोई रेसिप्रोकेशन, क्या क्या उन्होंने कौम के साथ किया, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिली उनको, इल्ला दो लोगों के मुसलमान होने के. यहीं से हमने बात शुरू करी थी, क्योंकि हमें पता है 10,000 में से एक घराने में शायद हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगी. तो रेसिप्रोकेशन का ढोल पीटने का कोई फायदा नहीं है दुनिया के अंदर. हाँ आखिरत में रेसिप्रोकेशन ऐसी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरे अल्लाह के हुक्म की वजह से, मेरे अल्लाह की वजह से जो मैंने ये रिश्ता बनाया है, ये मैंने इसको कबूल किया है, तो मेरा अल्लाह जो है ना इस रिश्ते की लाज रखने के ऊपर मुझे दुनिया में भी इज्जतें देगा जब वक्त होगा, जब उसकी हिकमत में होगा, आखिरत में तो जरूर बिल जरूर देगा। मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम के वादों के ऊपर एतमाद है, बद एतमादी नहीं है मुझे अल्लाह के नबी के वादों के ऊपर। उन्होंने जो वादे किए हैं मुझे बताए हैं, उनके हदीसों के अंदर है, हमारे मशाइख हमें वो हमारे सामने बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं, वो झूठे वादे नहीं है। मैं मुसलमान हूं, मुझे उन वादों के ऊपर यकीन है, भरोसा है, एतमाद है। एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा अभी नहीं है तो भाई अगर मियां भी सुन रहा है, बीवी भी सुन रही है, तो क्यों नहीं बना सकते इसको, हेल्दी रिलेशनशिप क्यों नहीं बना सकते? ये जो अजीबोगरीब किस्म की शायद सोच है कि जी हाँ अच्छा है मैं तो बुरा करूंगा तो उसको जन्नत में ज्यादा अच्छा सवाब मिल जाएगा, अजीब हम ये सोच रहे हैं, मैं इसको टीज करूं, मैं इसको जो है अजियत पहुंचाऊं ताकि जन्नत में बड़े बड़े मुकाम मिल जाए, फिर मुझे भी घसीट लेगी। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, क्या तमाशे हमने मचाए हुए। भाई अगर हेल्दी रिलेशनशिप बना लेंगे तो दुनिया जो है ना वो जन्नत का नमूना बन जाएगी, जन्नत की आइसिंग ऑफ द केक जो है ना, आइसिंग ऑफ द केक दुनिया में मिल जाएगी आपको, और फिर दुनिया में आपके घराने से ऐसा खैर फूटेगा, फूट जैसे श्वाएं फूटती हैं ना, किरणें फूटती हैं और एक आलम मुनव्वर हो जाता है, ऐसे घराने से हिदायत की किरणें फूटेंगी और एक आलम मुनव्वर हो जाएगा। उसके लिए तैयारी नहीं है, टू डिफिकल्ट भाई, देखो ही नहीं उधर। भाई जो मुसलमान है ना उनके पास बड़ी नेमत है, और जिनका इस्लाही ताल्लुक है ना उनके पास इस दौर के अंदर सबसे बड़ी नेमत है, कश्ती नूह वाली नेमत है, कहफ वाली नेमत मौजूद है। अब इस नेमत को ठुकराएंगे, इस नेमत की नाकदरी करेंगे, या इस नेमत के साथ जो है वो धोखा दही और झूठ वाला मामला करेंगे जैसे हम अपने मशाइख के साथ कर रहे हैं, इतनी बड़ी सजा मिलेगी, इतनी बड़ी सजा मिलेगी, काफिर भी कानों को हाथ लगाएगा, काफिर भी शायद कानों को हाथ लगाए। जितनी बड़ी नेमत होती है ना उतनी बड़ी सजा मिलती है। अबू लहब को जितनी बड़ी सजा मिली ना किसी दूसरे को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके घर में नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, सबसे बड़ी अनमोल नेमत अबू लहब को मिली थी, और उसने उसको जिस तरीके से ठुकराया है उसकी सजा इतनी बड़ी, पूरे कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने ये किसी काफिर का जिक्र नहीं, नाम के साथ उसके ऊपर पूरी सूरत नाजिल करी अल्लाह ताला ने। तब्बत यदा अबी लहब हुआ, तब सगा चचा था ना, अगर ये मान लेता, अगर ये कदर कर लेता, इसको दौलत भी इतनी बड़ी मिलनी थी जितनी किसी और को दौलत इतनी बड़ी नहीं मिल सकती। यही मामला हमारा भी है, हमें अल्लाह ताला ने मशाइख का साथ अता फरमाया है, अगर हम उनकी कदर कर लेंगे, उनकी मान के चल लेंगे, उनकी बात को तवज्जो से सुन लेंगे, अमल करने की नीयत से ही, अमल ना भी करें, अमल करने की नीयत से भी अगर सुनेंगे ना, हमें वो मुकाम मिलेगा, किसी दूसरे को वो मुकाम नहीं मिल सकता। और अगर हम इनकी नाकदरी करेंगे, इन्ना अजाबी लशदी ल इन शकर तुम ल अजीद अन्नकुम व ल इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदी। तो अज़वाजी ताल्लुकात के अंदर इस इस्लाही ताल्लुक की सबसे ज्यादा रेलेवेंस है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कि शैतान सबसे ज्यादा इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करता है। यहां पर अगर हम अपने मशाइख से पूछ करके, उनसे सीख करके, बल्कि अगर हम उनके बयानात को ही गौर से सुनना शुरू कर दें ना, उनके बयानात में ही इतने हीरे मोती होते हैं, कि हर बात को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। हम तो सुन के नहीं दे रहे होते, सुन के नहीं दे रहे होते, पूछते भी ऐसे हैं कि अगले बंदे को गुस्सा है कि यार क्या मजाक बना रखे। आपके सामने शुरू में माशरती मसाइल कुछ रखे थे, आपको भी अंदाजा होगा, देखते रहते होंगे। तो भाई इतने बुरे हालात हैं, यानी काफिर जो है ना वो हमें तो थप्पड़ मार मार के तंग आ गया। अब हम पे तो कोई जू नहीं रहेंगे, नहीं ना थप्पड़, उसके थप्पड़ काते हैं, हमें तो कोई जू नहीं रहेंगे। अब तो वो ऐसी जगह पे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह पे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, नाम नहीं लिया जा सकता। काश के हमारे कुछ दीद खुल जाए, काश के हम बात को समझ जाएं कि हमारे साथ हमारे गुनाहों की वजह से अब हम किस मुकाम के ऊपर पहुंच गए हैं, जिल्लत और रुसवाई के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दफा आपके सामने पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग पीछे पीछे दोहरा करके अपने मशाइख की इत्तबा करने का सवाब हासिल कर लें। अब इस इत्तबा के ऊपर अमल जो है वो आगे की बात है। अल्लाह ताला से दुआ तो करते हैं कि अमल की तौफीक भी अता फरमा दे। तो इन तौबा कलमात को पीछे पीछे दिल में इस नीयत के साथ दोहरा लें कि मैं अपने तमाम पिछले गुज़श्ता गुनाहों के ऊपर, गलतियों कोताहियों के ऊपर अल्लाह ताला से माजरत करते हुए माफ़ी तलब करता हूँ, और यह इरादा करता हूँ और करती हूँ, क्योंकि ख़वातीन भी सुन रही हैं, कि आइंदा इन गुनाहों को नहीं दोहराऊंगा, आइंदा नहीं दोहराऊंगा। ये तौबा की दूसरी शर्त होती है। तो इन दोनों शर्तों के साथ फिर हम इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लें, और फिर उसके बाद जो मामूलात बताए जाएंगे अगर उन मामूलात के ऊपर भी अमल करेंगे तो तौबा की तीसरी शर्त भी मुकम्मल हो जाएगी। और तौबा की तीन शर्तें होती हैं, इन तीनों शर्तों के साथ फिर इंसान की तौबा मुकम्मल होती है और अल्लाह ताला के यहाँ फिर मकबूल करार दी जाती है। कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। तस्वीर तौबा कलमात यही हैं, इनके अंदर हमने अपने ईमान की तजदीद भी करी है। इन कलमात को पढ़ के ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल वाले कलमात, इनके अंदर हमने कलमा तैयबा भी पढ़ा है और उसमें हमने कलमा शहादत भी पढ़ा है, दूसरा कलमा भी शहादत भी दी है, और इस्तिग़फ़ार भी किया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, हर गुनाह से अल्लाह मैं आपकी मग़फ़िरत तलब करता हूँ और आपकी तरफ मैं रुजू करता हूँ, और फिर अल्लाह ताला की मदद भी मांगी है, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले आपकी रहमत के साथ ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। अब उसके बाद जो मामूलात हमारे मशाइख बताते हैं जिसके ऊपर अमल करने की कोशिश ही कर लें अगर हम, तो तौबा की तीसरी शर्त पूरी हो जाएगी। वो हैं कुल छह मामूलात मशाइख नक्शबंद के नज़दीक। पहला मामूल सुबह शाम 100 दफा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करना, सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना, और तीसरा रोजाना कुरान मजीद की कुछ न कुछ तिलावत कर लेना। ये कुल तीन मामूलात हैं। बज़ाहिर ये बहुत ही ऐसा लगता है कि जी बस ऐसे ही हैं,
सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं, और ये तो कोई खास वो भी नहीं है, इनको करने से कोई गुराह नहीं छूटता, और कोई वो तो अलग बाद में चले वकूफ़ कल भी कर लेंगे, मुराकबा कर लेंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन मामूलात के अंदर इस्तिग़फ़ार पढ़ने में और दुरूद शरीफ पढ़ने में और कुरान शरीफ की तिलावत में इतनी नूरानियत है, इतना नूर है इसके अंदर कि इंसान के लिए समझ लें कि बाकी जो तीन मामूलात है ना वो उनमें भी ये असिस्ट कर रही होती है। ये जो नूर मिल रहा होता है इंसान को, दुरूद शरीफ का जो नूर है, इस्तिग़फ़ार का नूर है, और कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये जो तीन बड़े बड़े कलमात हैं ना, इनसे इंसान के अंदर समझ लें कि एक 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 एनर्जी आ जाती है। इस एनर्जी से जो है ना फिर आगे भी फायदा होता है, यानी ये बिल्कुल बेअसल बेकार चीजें नहीं है। वकूफ कल्बी जो चौथा मामूल है कि हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना और इल्म और इरादे से गुनाह ना करना, ये वकूफ कल्बी चौथा मामूल है। पहले तीन तो हो गए ना, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान शरीफ, चौथा वकूफ कल्बी है, हर किस्म के गुनाहों को छोड़ देना। इस वकूफ कल्बी के अंदर ये नूर इंसान की जो है ना वो रहनुमाई कर रहा होता है, नूर मदद कर रहा होता है, जो कि दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और कुरान मजीद के जरिए से उसको मिलता है। तो इनको कम अहमियत बिल्कुल भी हम नहीं दे सकते। फिर पांचवा मामूल है मुराकबे का, और मुराकबा जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह से है। ये क्या करता है, ये जो है वो जड़ से निकालता है गुनाह, गुनाहों की जो जड़ है जिसको रूहानी बीमारियां कहते हैं, तकब्बुर, शहवत, गुस्सा, हसद, हिर्स वगैरह, तो इनको जड़ से खत्म करने की भी जरूरत है। खाली ऊपर ऊपर से जो है वो गुनाह से बच रहे हैं, जैसे मार पीट करके और एक तरह से हांपते कांपते गुनाह से बच गए, जड़ तो अंदर की अंदर पहले की सारी मौजूद है। तो जड़ की जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे तो इसमें हमारी दवाम नहीं आ सकेगा वकूफ़ कल्बी के अंदर। तो मुराकबा जो है वो फिर जड़ से निकालने का काम करता है। और छठा और आखिरी मामूल जो कि राबता शेख है, तो ये राबता शेख जो है ये आपको अक्सर बताते रहते हैं कि ये इन पांच मामूलात के ऊपर खड़ा करने के काम आता है। यानी हम इनके ऊपर खड़े नहीं हो पाते जब तक हम राबता शेख शुरू में ज्यादा एहतमाम के साथ नहीं करते। क्यों? इसलिए कि शैतान जो है वो शेख का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इन मामूलात के ऊपर खड़े करने से हमें बहुत धक्के दे दे करके रोक रहा होता है। तो जिसका राबता शेख नहीं होता वो शैतान के रहम करम पर होता है, और जो शैतान के रहम करम पर है उसका कुछ नहीं हो सकता, जाहिर है उसका कोई खैर नहीं हो सकता, उसके सिर्फ साथ सिर्फ शर ही शर हो सकता है। तो कुल छह मामूलात हैं, इनके ऊपर अगर हम पाबंदी करने की कोशिश ही कर लेना तो, यानी एक होता है ना कि इंसान इनकारी हो किसी चीज का, और एक होता है कि इनकारी नहीं है, यानी मानता है कि हाँ ये अहम है, और जितना उससे मुमकिन होता है उतना वो कर लेता है, तो ये बात भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाती है। और आजकल मशायख फरमाते हैं कि इस दौर के अंदर तो बहुत, यानी ये नीयत और थोड़ी बहुत जो मेहनत होती है ना अल्लाह ताला के यहाँ, ये बहुत ज्यादा मकबूल है और बहुत ज्यादा इसकी कदर है अल्लाह ताला के यहाँ। चार्जर की मिसाल देते हैं कि पहले जो है वो आप अपने फोन को चार्जर पे लगाते थे तो वो एक घंटे के अंदर फोन चार्ज होता था, दो घंटों में चार्ज होता था। आज वो फास्ट चार्जर्स आ गए हैं, उनके ऊपर लगाते हैं तो 15 मिनट के अंदर पूरा पूरा फोन जो है वो चार्ज हो जाता है, कभी तो 5 मिनट पे भी हमने देखा जो आजकल नए आए हुए हैं। तो आजकल यही मामला है कि चार्जिंग की जो है ना वो नए चार्जर, रूहानी चार्जर अल्लाह ताला ने आम कर दिए हैं। तो थोड़ी देर के लिए भी अगर हम बैठ जाएंगे, थोड़ी देर का मतलब है 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तो हमारी रूहानी बैटरी जो है वो अच्छी खासी चार्ज हो जाएगी। बहरहाल बातें तो बहुत की जा सकती हैं लेकिन वक्त भी इतना नहीं है, इस वजह से हम उस मुराकबे की थोड़ी सी मशक करके हम दुआ करके खत्म करते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया जो कुछ दुनिया में है उसे हटकट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाएं। बस दिल के अंदर ये सोच लें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमल की अपने असास क्या है, अमल की अपने असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, अमल की अपने असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, के बस मेरा आसरा यही है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, के बस मेरा आसरा यही है। لا اله الا الله محمد رسول الله توكل سبحان رب العال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم نے دنیا والوں کو دیکھا کہ اگر وہ گلی کے اندر کسی کتے کو دیکھتے ہیں اس کتے کے اوپر ایک پٹا بندھا ہوتا ہے لیکن آوارا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کتے کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ تو کسی مالک کا کتا ہے، اس کا پٹا اس کے گردن میں لگا ہوا ہے، اس کو پھر روٹی بھی نہیں ڈالتے کہ پتہ نہیں اس کا مالک اس کو کوئی خاص خوراک دیتا ہوگا، اس کو پتھر بھی نہیں مارتے، ان کو پتا ہے کہ یہ کتا اپنے مالک کے پاس ہی جائے گا، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اے اللہ ہم نے بھی اپنی گردن کے اندر آپ کے دین کا پٹا ڈالا ہوا ہے، اے اللہ ہم دیندار کہلاتے ہیں، اے اللہ ہم نے بھی اپنے چہرے پہ داڑیاں اگا لی ہیں، اے اللہ ہم نے بھی سنت لباس پہننا شروع کر دیا ہے، اے اللہ ہماری عورتوں نے بھی کالے برقعے یا کسی طریقے کا بھی پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ عالم کورس کرنا شروع کر دیا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی شروع کر دی ہے، اے اللہ محفل ذکر میں بیانات کے اندر آنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ ہم دیندار مشہور ہو گئے ہیں، اے اللہ لیکن آپ ہماری حقیقت سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارا صرف رنگ بدلا ہے، اے اللہ ہماری صرف کھال بدلی ہے، ہم اندر سے دیندار نہیں بن پا رہے، لیکن اے اللہ دنیا والے ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اے اللہ ہماری مثال اس کتے کی جیسی ہے کہ جس کا مالک ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ مالک کے پاس سے ہی اس کو ملے گا، اے اللہ اسی طرح دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین والے ہیں، ان کو تو دین سے سب کچھ مل جائے گا، لیکن اے اللہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ اوپر سے دیندار ہیں لیکن اندر سے ہم بہت زیادہ دنیا دار ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے اور آپ کے یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے، اے اللہ آپ کے یہاں تو چہروں کو بھی نہیں لباس کو بھی نہیں، اے اللہ دلوں کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اے اللہ دل کی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے، اے اللہ ہماری مثال کہیں یہ نہ ہو جائے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، کہاں کے بھی اے اللہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ
ہمارے اس بہروپیے کو دور کر کے اے اللہ ہمیں ایک روح عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسے باہر سے بنے پھرتے ہیں اے اللہ اندر سے بھی ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ چھپتے پھر رہے ہیں کہیں زیادہ دیندار نہ بننا پڑ جائے، اے اللہ بھاگتے پھر رہے ہیں یہ کہیں شریعت کی پابندیاں ہمارے اوپر زیادہ نہ لگ جائیں، اے اللہ دنیا سے دل ٹوٹ نہیں رہا، اے اللہ ادھر سے کھینچے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ ہم رخ اپنا آپ کی طرف کر کے نہیں دے رہے، اے اللہ دنیا سے اپنا رخ پھیر کے نہیں دے رہے، اے اللہ پھر آپ کی تجلیات اور اے اللہ آپ کے حسن کی رانائیاں ہمیں اپنی طرف کیسے کھینچیں گی، اے اللہ ہم نے تو آپ کی طرف اپنی پیٹ کی ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے تو آپ کی طرف اے اللہ اپنا دور کیا ہوا ہے، اے اللہ ہم پھر کیسے آپ کی محبت کی جلتی رانائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اے اللہ آپ کی طرف کیسے کھینچیں گے، اے اللہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ بڑے فخر سے اپنے قرآن کے بارے میں اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کے اوپر، میں نے زمین کے اوپر، میں نے پہاڑ کے اوپر یہ بوجھ ذمہ داری رکھی تھی، لیکن ان سب نے انکار کر لیا، معذرت کر لی اور وہ ڈر گئے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے، وہ ہمارا حل انسان، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، انہوں کھانا ظلوما جہولا، اے اللہ ہمارے مشائخ نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ یہ انسان جس نے کہ اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا، اے اللہ وہ آپ کی محبت سے دیوانہ ہو گیا تھا، اے اللہ وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا، اے اللہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر کے اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھا لیا، اے اللہ جسے وہ آپ کی محبت میں، اے اللہ وہ اپنا سب کچھ بھول چکا تھا، اے اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی بھی تو یہی تفسیر ہے، لیکن اے اللہ ہم کتنے برے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے جد امجد کی طرف سے یہ بوجھ اٹھانے والی بات کو بھی نہیں سمجھا، اے اللہ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ اس دین کی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتے، اے اللہ بھاگتے پھرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ بچتے پھر رہے ہیں، لیکن اے اللہ بکری کی ماں کب تو خیر منائے گی، اے اللہ کہاں تک بھاگیں گے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی میں بھاگ لیں گے، لیکن اے اللہ جب موت آئے گی تو پھر تو دھر لیے جائیں گے، اے اللہ پھر تو پکڑ لیے جائیں گے، اے اللہ ہمیں اس دین کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کو اے اللہ ہمارے دلوں سے کوٹ کوٹ کے باہر نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ اتنا دین پڑھنے کے بعد، اے اللہ اتنا دین سننے کے بعد، اے اللہ اتنا کچھ جو ہے وہ جان لینے کے بعد بھی، اے اللہ ہمارے دل سے دنیا والوں کی محبت نہیں نکل رہی ہے، اے اللہ دنیا کے تعلقات کو ہم اس دین کے اوپر قربان نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اے اللہ جو بھی دنیاوی ہماری خواہشات ہیں ان خواہشات کو ہم نہیں قربان کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ نازل فرما دیجئے گا، اے اللہ اس دین کی ناقدری کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں نازل فرمائیے گا، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عذاب کے آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں اس ہرن کی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں جس کے سامنے شیر جو ہے وہ اس کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، یا آنکھیں بند کر کے سمجھ رہا ہے کہ شیر اس کو کچھ نہیں کرے گا بلکہ وہ جہاں سے چلا گیا ہے، اے اللہ ہم نے بھی اسی طریقے سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، اے اللہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے قلب کی آنکھوں کو کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے باطن کی آنکھوں کو کھول دیجئے، اے اللہ ہمیں وہ وعید نہ سننی پڑ جائے قیامت کے دن کہ تم نے اس دنیا کے اندر میرے ذکر سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، آج جو ہے وہ میں نے تمہیں اندھا کھڑا کر دیا ہے، اب تم کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے، کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے، اے اللہ اس اندھے پن سے اس دنیا کے اندر ہمیں توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھ چکے ہیں لیکن اے اللہ حقیقی توبہ بھی کر لینا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کب تک سمٹمز کا رونا پیٹتے رہیں گے، اے اللہ کب تک اس لکیر کو پیٹتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں بات کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر ہم نے کتنی کامیابیاں اے اللہ, کتنی عزتیں کما لی اے اللہ, کتنا زیادہ مال پیسہ کما لیا, لیکن اے اللہ دین کی بنیادی بات بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. اے اللہ مزاج شریعت ہمارے نہیں سمجھ میں آ رہا. اے اللہ یہ دین کس لیے آیا تھا نہیں سمجھ کے دے رہے. اے اللہ الفاظ پڑھ پڑھ کر کے, چکر کاٹ کاٹ کر کے اور ٹکریں مار مار کر کے, اے اللہ ہم نے پورا کا پورا دین اسی کو سمجھ لیا ہے. اے اللہ اس دین کی حقیقت کب سمجھ میں آئے گی؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دیجئے, اے اللہ ہماری عقلوں کو وسیع کر دیجئے, اے اللہ ہمیں عمق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں گہرائی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری عقلوں کو عقل سلیم بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے اکابرین کے ساتھ جو آپ نے ظاہری نسبت عطا فرمائی, اے اللہ اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اس نسبت کو اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے اس نسبت کو بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, ہماری نسبتوں کی, ہمارے دین کی, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک دوسرے اپنی مخلوق کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اور ہر قسم کے شرور سے ہماری, ہمارے اہل و اولاد کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو, مشائخ کو, اساتذہ اکرام کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے گناہ جاریہ بننے کی اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے گناہ جاریہ بننے کے راستے کے اوپر مت ڈال فرما. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اے اللہ سچی اور سچی زندگی نصیب فرما, اے اللہ سچی اور سچی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کا عاشق بنا, اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا عاشق بنا, اے اللہ حبیب علیہ السلام سے اے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما, اے اللہ اس محبت کی غیرت نصیب فرما. اے اللہ کیسی بے غیرتی والی محبت ہے کہ محبوب کے ساتھ کوئی کچھ کرتا پھرے ہماری جو غیرت جاگ کے نہیں دیتی, چند دن کا واویلا کرتے ہیں اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اے اللہ کیسی بے غیرتی والی زندگی ہے, اے اللہ کیسا بے غیرتی والا دین ہم نے اپنایا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں غیرت والا دین عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں حمیت دینی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی غیرت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی دینی حمیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے, اے اللہ دین کے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اے اللہ آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے, اے اللہ ہماری آزمائشوں سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو ویسے آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں, ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرما لیجئے. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو, ان کی صلاحیتوں کو اے اللہ فضول کے کاموں کے اندر, اے اللہ وقت ضائع کرنے کی چیزوں کے اندر اے اللہ ضائع نہ ہونے دیجئے. اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے قبول کر لیجئے, اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ دین کی حقیقت کے لیے اے اللہ ہمیں استعمال فرما لیجئے, اے اللہ دین کے علوم نافعہ کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ عمل صالحہ کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ کاتہم کی اے اللہ زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما دیجئے, ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر, اے اللہ عافیت کے ساتھ پورا اللہ قائم دائم فرما دیجئے. اے اللہ ان کے گھرانے, ان کے تمام پروجیکٹس کے اندر, اے اللہ ان کے مدرسے کے اندر, ان کے ماہد کے اندر اے اللہ خوب برکتیں اور اے اللہ اپنی خصوصی مدد شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دعائیں لینے والا بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں بات سمجھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جن گھروں کے اندر بھی پریشانیاں ہیں, جس قسم کی بھی ظاہری, باطنی, معاشی, اے اللہ معاشرتی, گھریلو, جس قسم کی بھی ناچاکیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بہت تھوڑے سے نظر آتے ہیں. اے اللہ دین کے لیے اپنے آپ کو اے اللہ ہم نے اس جہاں تک پہنچا دیا ہے. اے اللہ بہت سارے دوسرے کام تھے, بہت سارے دوسرے مشغلے تھے اور تفریحات تھیں جو کہ اے اللہ یہ آنے والے کر سکتے تھے اس وقت میں, لیکن اے اللہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر کے اے اللہ یہاں تک آ گئے ہیں. اے اللہ توجہ سے بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں, اے اللہ عمل کرنے کی نیت رکھتے ہیں, ورنہ اے اللہ کوئی ان کو مار پیٹ کر کے تو یہاں نہیں لے کر کے آیا ہے. اے اللہ بس آگے بڑھنا ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے, شیطان کی وجہ سے اے اللہ ہمارے لیے ایک مشکل بن گیا ہے. اے اللہ آپ اس کے اندر ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کی اولادوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ گھر کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو باتیں سمجھائی گئیں کہیں گئیں اے اللہ ان میں سے کسی کو ہمارے ہم میں سے کسی ایک کے بھی خلاف حجت کے طور پر استعمال نہ فرما دیجئے. اے اللہ جو اچھی بات کہی گئی آپ کی دی ہوئی توفیق سے کی گئی, اے اللہ جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اے اللہ وہ ہماری طرف سے تھی, اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے اس میں بیٹھنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ عرش کا سایہ پانے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ مغفرت کا اے اللہ وجہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اس محفل ذکر کو اے اللہ آپ کے دین کی نسبت سے بیٹھنے کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اے اللہ اپنے دیگر وسائل پیش کیے, اے اللہ ان سب کے بدلے اے اللہ ان کو اپنی محبتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ شرور سے, جادو ٹونے سے, اے اللہ بدگمانی سے, بد اعتقادی سے, اے اللہ گمراہی سے, اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.